हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वरदान और अंजलि युग के टॉर्चर रूम से बाहर निकल गए थे। वो जैसे ही एसी ट्रंक को पार करके बाहर की तरफ आए, उन्होंने देखा कि वो रास्ता युग के विला में ही था। युग ने उन दोनों को पकड़ लिया था। युग को अब अंजलि की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने अंजलि को चाकू घूंप कर मार दिया था। वैसे भी अंजलि की उस हरकत के बाद युग उसे जिंदा रखने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। अंजलि को मारने के बाद युग अंदर पहुंचा। उसके चेहरे और कपड़ों पर खून के छींटे थे। अंदर कृषा युग के लिए कॉफी बना रही थी। जैसे ही युग के कदमों की आहट सुनी, कृषा मुस्कुराते हुए उसके लिए कॉफी लेकर गई। अचानक उसने युग को खून से सना हुआ देखा। कृषा के हाथ से कॉफी का मग छूटकर नीचे गिर गया था। कृषा के कदम मानो वहीं पर जम गए हों। युग उसके पास गया और कृषा के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, डर लग रहा है तुम्हें मुझसे? नहीं, वो नहीं, कृषा अटकते हुए शब्दों से अपनी बात पूरी करने की कोशिश कर रही थी। युग को उस तरह देखकर वाकई वो डर से कांपने लगी थी। कृषा के चेहरे पर डर देखकर युग के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो कृषा की तरफ देखता रहा। युग को एहसास था कि कृषा को उससे डर लग रहा है, फिर भी वो जानबूझकर उसके पास से एक कदम भी नहीं हिला। कृषा ने फिर धीरे से कहा, मारना जरूरी नहीं था। तुमने बाकी लोगों को भी अपनी कैद में रखा है, उन्हें भी रख लेते, जान लेने की क्या जरूरत थी? उन्होंने जो किया उसके बाद बुरी जिंदगी भी उन्हें नसीब नहीं करूंगा मैं। उन्हें उनकी किस्मत में मौत ही लिखी है। बस फर्क इतना है कि वो कब तक मेरे काम आते हैं। अंजलि मेरे किसी काम की नहीं थी, उल्टा वो वरदान को वहां से भगाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उसे मार दिया। वरदान अभी भी जिंदा है, तुम्हें उसे मिलने का शौक है तो जाकर मिल सकती हो, युग ने सख्त आवाज में कहा और फिर कृषा को वहीं पर छोड़कर चला गया। युग के जाते ही कृषा ने राहत की सांस ली। उसके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। कृषा ने अपने मन में कहा, अच्छा हुआ मैं अंदर आ गई, जरूर इसने उसे बेरहमी से मारा होगा और ये देखकर मेरी जान चली जाती। ये कैसे खून से सना हुआ है, ये सख्त है, तभी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहीं कृषा से अलग होकर युग बाथरूम में आया था। वो आईने के सामने खड़ा था। उसने देखा उसके चेहरे पर काफी सारा खून लगा था और कपड़े पर भी। युग ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, तुम्हें मेरी हर एक शख्सियत से प्यार करना होगा और तुम इस बात से भाग नहीं सकती कि मैं कोई रहमदिल इंसान नहीं हूं। कृष, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैं माफिया किंग की पोजीशन पर होने के बावजूद बाकी लोगों जैसा नहीं हूं जो किसी बेगुनाह की जान ले। लेकिन किसी ने मेरा बुरा किया है तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा और इतनी ही बेरहमी से मारूंगा, चाहे फिर उसके लिए तुम मुझसे डरने ही क्यों ना लगो। युग ने अपने हाथों को धोया और फिर अपने चेहरे को साफ करने लगा। नहाने के बाद युग कृषा के पास पहुंचा। वो कमरे में वापस आ गई थी और युग के लौटने का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही युग बाहर आया, कृषा उसकी तरफ देखकर बोली, लिसन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो, मैं सुन रहा हूँ, युग ने जवाब दिया। कृषा युग के सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई नो तुम्हारी लाइफ अलग है और ये सब करते हुए तुम्हारे हाथ भी नहीं कांपते होंगे, लेकिन मुझे तो तुम्हें देखते हुए ही डर लगता है। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी इस शख्सियत से मुझे प्यार भी नहीं है। तुम पहले से ही ये सब कर रहे हो, इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकती कि तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ एक नॉर्मल लाइफ बिताओ। कृषा बोल रही थी तभी युग ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, जो कहना है सीधे सीधे कहो, इस तरह बातचीत की शुरुआत से पहले बेस बनाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं आई हुई हो। ओके, तो फिर सीधा सीधा सुनो, मेरे बच्चे, हमारे बच्चे कभी भी माफिया की दुनिया को ज्वाइन नहीं करेंगे। तुम क्रूएल हार्टेड हो, जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे ही तुम्हारे बाद में माफिया किंग बने। हमारी फैमिली में भी यही हुआ था। मुझे ये पोजीशन नहीं चाहिए थी तो ये तुम्हारे पास चली गई। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, कृषा ने सीधे सीधे कहा। हालांकि वो इस बात को ठीक से युग को समझा नहीं पाई थी कि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे युग की तरह क्रूएल हार्टेड बने या इतनी बेरहमी से किसी को जान ले, पर युग उसके कहने का मतलब अच्छे से समझ रहा था। युग ने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा, फिर उसने अपने कदम कृषा की तरफ बढ़ाने शुरू किए। डर के मारे कृषा अपने कदम पीछे ले रही थी। उसे लगा युग उसकी बातों से नाराज हो गया। कृषा के चेहरे पर घबराहट के भाव थे और उसने जल्दी से कहा, देखो, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। तुम दिल के बहुत अच्छे हो और लुक्स भी बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, पर उन्हें इतना बेदर्द नहीं बनाना चाहती मैं कि वो किसी की जान लेने से पहले एक बात भी न सोचे। पीछे खिसकते हुए कृषा दीवार के लग चुकी थी। युग उसके पास आया और उसे दोनों कंधों से पकड़ा। उसने कृषा की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे बच्चे कभी मेरे जैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने अपनी मॉम को मरता हुआ नहीं देखेंगे। मेरे होते हुए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। रही बात माफिया की दुनिया ज्वाइन करने की, तो ये फैसला उनका होगा। तुम बीच में इंटरफेयर नहीं करोगी और ना ही मैंने तो तुम्हारे मामले में भी नहीं किया। कृषा ने युग की बात पर हामी भरी। वो युग से आगे कुछ कह पाती उससे पहले युग ने उसे वहीं पर छोड़ा और वहां से चला गया। कृषा को अब पछतावा हो रहा था कि अनजाने में ही सही उसने युग का दिल दुखाया था। कृषा ने सिर पकड़कर धीरे से कहा, ये फिर से मुझसे नाराज हो गया। मैं बस ये कहना चाहती थी कि हर माँ बाप की तरह मैं भी अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ, वो एक सक्सेसफुल इंसान बने, ना कि कोई सक्सेसफुल माफिया, बिल्कुल अपने डैड की तरह। कृषा ने युग को वो सब कह तो दिया था, लेकिन अब वो उसे मनाने के लिए उसके पीछे जा रही थी। कृषा नहीं जानती थी कि युग इस वक्त टॉर्चर एरिया में गया है। वो बस युग के पीछे दौड़ते हुए जा रही थी और अनजाने में ही उसके पीछे टॉर्चर एरिया में घुस गई, जहां वरदान को बांधा जा चुका था।